श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 39। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। फिर से, यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। एक बार फिर, यदग्रे चानुबन्धे च सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसम् उदाहृतम्। शब्दों का अर्थ देखिए। यद यानी जो, अग्रे प्रारंभ में, स्टार्ट में, च भी, अनुबंधे यानी अंत में, एंड में, स्टार्ट में और एंड में। आगे च भी, सुखम, सुख ऐसा सुख जो स्टार्ट में भी और एंड में भी क्या होता है, आगे भगवान बता रहे हैं। मोहनम आत्मना, अपने आप को भ्रांत करने के लिए, अपने आप को मोहग्रस्त करने के लिए, यानी होता कुछ नहीं है, सुख होता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक हमारा मोह होता है जिसके कारण हमें वो सुख लगता है। वो स्टार्ट से लेकर अंत तक सुख उसमें कुछ नहीं होता। और वो कैसे महसूस होता है, नेक्स्ट लाइन में भगवान बताते। निद्रा यानी नींद से, आलस्य यानी सुस्ती से, प्रमाद अर्थात मोह से, यानी कि या नींद से या सुस्ती से या मोह से, या फिर ऐसे जैसे ऐसे बोलते ना, पागल, पागल को सुख मिलता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे सुख मिला है, मुझे ये प्राप्त हो गया। तो मोह से तत् तामसम उदाहृतम, भगवान कहते हैं तत् माना वो, तामसम मतलब तामस तमोगुणी, उदाहृतम कहलाता है वो जो सुख है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ मोहग्रस्त है, सिर्फ मोह है, भ्रांति है, और वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, और वो तामसी कहलाता है। अनुवाद देखिए, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के लिए अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त, मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा भय से उत्पन्न होता है, वह तामसी है। एक बार फिर से अनुवाद देखते हैं, शायद मिस्टर को। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो श्रुतिदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अष्टदशोध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। आज भगवान हमें तमोगुणी सुख के विषय में बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों तमोगुण का मतलब ही होता है दुख, यानी कि अंधकार अज्ञान, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 14 टेक्स्ट 8 में बता चुके हैं। तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनम् सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब यह तमोगुण जो है वो तमस्त ज्ञान जम विद्धि, यानी ये अज्ञान से उत्पन्न होता है और अज्ञान से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञान से हम कभी सही डिसीजन ले नहीं सकते, और जब सही डिसीजन नहीं होगा, रॉन्ग डिसीजन होगा, तो जाहिर सी बात है वो हमारे दुख का कारण बनेगा। कैसे? जैसे गलत व्यक्ति से, जैसे हमने सही डिसीजन नहीं किया, अज्ञानता में रहकर गलत व्यक्ति से अगर हम मित्रता कर देंगे तो फिर आगे हमारे लिए हानिकारक होगा। गलत डॉक्टर के चुंगल में फंस गए तो रोग खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ता जाएगा। गलत टीचर के हाथ लग गए तो कभी भी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मतलब जो भी चीज हम गलत, जैसे कोई गलत चीज खा लेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बीमार हो जाएंगे। तो गलती हम क्यों करते हैं? गलती इसलिए होती है क्योंकि अज्ञान है। अब जो ज्ञानी होगा उसको तो खबर होगी कि ये चीज नहीं करनी है, लेकिन अज्ञान है, तमोगुण है, जिसकी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं और जिसके कारण हमें दुख मिलता है। वास्तव में ये दुख होता है, सुख नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम इतने अज्ञान में होते हैं कि हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि वो सुख है या दुख है। तो भगवान आज उस सुख को, जो कि वास्तव में दुख का ही एक कारण है, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं यदग्रे चानु बंधे च सुखम मोहनमात्मनः। यदग्रे चानु बंधे च, अग्रे मतलब स्टार्ट में और अनुबंधे मतलब अंत में। स्टार्ट से लेकर अंत तक भगवान ने कहा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, मतलब उसको कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन उसमें नहीं होती है, और स्टार्ट से लेकर अंत तक मोह कारक है, सिर्फ और सिर्फ मोह ही है, सिर्फ एक भ्रांति है, एक सुख का भ्रम है, वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बगैर सुख का होना संभव ही नहीं है। अज्ञान में सेल्फ रियलाइजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता, और क्योंकि हम आत्मा हैं, तो जब तक हम आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक तो सुख होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भगवान कह रहे वो फिर भी भ्रांति में, मोह में ये समझते हैं कि मैं सुखी हूँ। ऐसा कैसे होता है? जैसे जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, अब शराब पीने में क्या है, स्टार्ट में अभी तक शराब उसने ली नहीं है, उससे पहले उसे गलत कार्य करने पड़ते, क्योंकि ज्यादा धन चाहिए उसके लिए और धन अर्जित करने के लिए वो गलत कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद शराब जब लेकर आता है तो जब पीता है तो भी उसे कड़वा लगता है, मतलब इतना उसका गंदा टेस्ट होता है और इतनी बदबू होती है कि पहली बार जिसको शराब आप एक गिलास पिला दो ना तो उसको डेफिनेटली उल्टी आ जाएगी, इतना ज्यादा उसका गंदा टेस्ट होता है। तो मतलब स्टार्ट में अपराध, सेकेंड टाइम पर दुख अभी, लेकिन क्योंकि भगवान ने पहले बताया 36 में कि अभ्यास आद्रमते, फिर ऐसे ऐसे करते, ऐसे लोगों के साथ रहते, शराबियों के साथ रहते रहते उसको अच्छा लगने लगता है और वो इसी दुख में सुख का अनुभव करता है। और क्या होता है, जब वो शराब पी लेता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपनी वास्तविकता भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मैं किसका बेटा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ भूल जाता है और बिल्कुल पागल हो जाता है और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। ऐसा समझता है, अगर किसी से आप पूछो कि भाई आप शराब क्यों पी रहे हो, तो कहेंगे कि शराब पीने से एक नशा छा जाता है। और बोलो ठीक है, नशा छा जाता है तो आप पीते क्यों, मतलब उसमें नशे में क्या है? तो नशे में ऐसा है कि आप अपने समस्त दुखों को भूल जाते हो, जितने भी आपके पास दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जो आपको इतना सारा फ्रस्ट्रेटेड जो चीजें कर रही हैं, जितना टेंशन है आपका इस संसार में, वो सारा का सारा भूल जाते हो। कभी पानी का बिल, कभी लाइट का बिल, कभी बच्चों की फीस, कभी घर में राशन नहीं है, कभी खाना नहीं है, कभी कपड़ा नहीं है, कभी घर में ये प्रॉब्लम है, बाहर वो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप बिल्कुल भूल जाते हो और अपने आप को इस देश का राजा मानने लगते हो। आप समझते हो मुझसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं, लेकिन वास्तव में यह अज्ञानता है, क्योंकि दुख खत्म नहीं होता है, दुख भूला नजरअंदाज हो रहा, लेकिन वास्तविक सुख कब आएगा आपको, जब आपके दुखों का निवारण हो जाएगा, जब समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, तब होता है वास्तविक निवारण। लेकिन सुप्त राजसी बात है तभी होगा ना जब आपके पास कोई, अब जैसे किसी के जिस्म में कहीं पर दर्द हो रहा है या कहीं पर दाना निकला या कुछ भी, पेन इतना तेज हो रहा है और उस टाइम पर पेन को खत्म करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वो उस पेन का समूल नष्ट तो नहीं करेगा, उसको टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उस जगह को सुन कर दिया जाएगा और वो पेन उसको फील नहीं होगा, लेकिन उसको खत्म करने के लिए डेफिनेटली उसको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से हमारे जीवन के जो दुख हैं, स्पेशली जो आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 7 किस्म के जो दुख हैं वो हर जीव को तंग कर रहे हैं, तकलीफ दुखा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो इस तकलीफों को भूल जाने का बाद क्या होता है, तमोगुणी सुख होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इन तकलीफों को हम कैसे जड़ से खत्म करें, ये होता है सात्विकी सुख। अब शराब चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितनी देर तक उसका असर चलेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या फिर पूरी रात, बहुत ज्यादा महंगी होगी तो पूरी रात भी चल सकता है, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो कोई नशा नहीं होगा, वही तकलीफें हमारे सामने। जैसे हमारे घर में अगर कभी भगवान ना करे किसी के घर में आग लग जाए और वो बिस्तर पर आंखें, जो भगवान श्री कृष्ण ने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से जो सुख उत्पन्न होता है। जैसे निद्रा, आप सोचो कि भाई है ना घर में आग लगी हुई है और आप आंखें बंद करके सो जाओ, भले तकलीफ नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आंख बंद करके सो जाओ, ये इससे आग बुझेगी तो नहीं ना, इससे तो और भी हो सकता है मेरे घर को खाली नुकसान ना पहुंचे, मैं मुझे भी क्षति पहुंचे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस आग को बुझाना पड़ेगा ना, उस आग को अवॉइड करने से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो कार्यशील नहीं होते, वो कार्य नहीं करते, निद्रा आलस्य प्रमाद, उनके अंदर बहुत ज्यादा नींद, ये जिसके अंदर ज्यादा नींद का स्वभाव होता है ना, समझ जाओ कि वो तमोगुणी है, जिसको ज्यादा सोना। कुछ कुछ लोग बहुत सोते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 6.17, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत प्रिय है, और इसको अगर हम लोगों को करना आ जाए ना तो फिर बहुत इजी हो जाएगा इस दुनिया में रहना। भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी कि बैलेंस होना चाहिए, खाना इतना ज्यादा ज्यादा नहीं खाना चाहिए और एकदम कम भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए और एकदम कम भी नहीं सोना चाहिए, तो और दूसरा काम करना और खान, हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। युक्त का मतलब होता है नियमित होना चाहिए, हर चीज का शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं, कुछ लोग क्या कितना सोते हैं रात को, तो है ना, बल्कि और भी रात को जागते हैं 3 बजे से रात को 12, हालांकि शास्त्र क्या कहता है कि संध्या के बाद से समय शुरू होता है जो रात का, उस समय में हमें सोना चाहिए और सुबह प्रभात के टाइम पर उठ जाना चाहिए। लेकिन वो जो आलसी होता है, जो तमोगुणी होता है, वो क्या करता है, रात में जागता है, प्रभात में सोता है। रात को उसको जागना होता है, टीवी देख रहा होता है, गप्पे लड़ा रहा होता है, इससे फिजूल में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि अब दिन को जागेगा तो क्या होगा, क्योंकि वो दिन को सारा टाइम सो रहा होता है, बहुत देर तक सोते हैं, कोई कोई लोग 12-1 बजे तक सो रहे होते हैं और मेड आ जाती है सफाई करने के लिए, एक रूम साफ करके उसको घसीट के दूसरे रूम में रखा जाता है कि भाई यहाँ से सफाई करनी है, ऐसे सोना ही उसको अच्छा लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इतने आलसी होते हैं कि यदि वो दोपहर को जागेंगे, यदि तो वो क्रिया का, रजोगुण का टाइम है, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं कि वो टाइम पर सो रहे होते हैं ताकि उनको कोई काम नहीं करना पड़े, पड़े। अब रात को जाहिर सी बात है 12 बजे 1 बजे 2 बजे उस टाइम पर तो कोई काम होता ही नहीं, तो उस टाइम पर वो उन लोगों की तरह जाग रहे होते हैं। और दोपहर को शाम को उस टाइम पर जब हमें कार्य करना चाहिए, जब अपने कार्य के लिए, देखो युक्त का मतलब होता है एकदम बैलेंस होना चाहिए हर चीज का, खाने का, सोने का, कार्य करने का। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 24 घंटों को अगर हम डिवाइड करें ना तो 8 घंटे हमें कार्य करना चाहिए। जाहिर सी बात है सब लोग मनुष्य जो भी हैं उनको अपने जीविका को पालन करने के लिए कार्य करना, तो कार्य के लिए बैलेंस है, बस 8 घंटे आपको कार्य करना, आपके नसीब में जितना लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार आपके हिस्से का दुख आपको स्ट्रगल किए बगैर भी आपके घर तक पहुंच जाता है, उसी तरह आपके हिस्से का जो सुख है, आपके कर्मों अनुसार जो आपको सुख और संपत्ति मिलने वाली है वो भी आपको मिलेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 8 घंटे में आपको जो प्राप्त होता है वो आपके हिस्से का है, आप उससे संतुष्ट रहिए। तो आगे लेकिन है ना, जैसे 8 घंटे काम को लगाए, ठीक है, 6 घंटे सोने के लिए रखे, कितने घंटे हुए, 14 घंटे, और उसके बाद 8 घंटे हम अगर भक्ति को देते हैं, ठीक है, आप 8 घंटे आपने काम भी कर लिया, 6 घंटे सो भी गए, 8 घंटे अगर आप भक्ति को देते हो तो कितने हुए, 22 आवर्स, ठीक है, आपके पास टोटल 24 घंटे हैं। उसके बाद भी आपके पास 2 घंटे रहते हैं जिसमें आप दूसरे कार्य कर सकते हो, जो कि घर में आपको करने होते हैं, जो नित्य क्रियाएं होती हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम जो तमोगुणी लोग होते हैं, तमोगुणी की बात हो रही, वो ज्यादा टाइम सोने में ही लगाते हैं, ना अपने नियत कर्म करते हैं, ना नित्य कर्म करते हैं, और ना ही इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीकेंड्स में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो, वो वीकेंड्स में अपने बिस्तर के सामने ही अपना ना जो खाना होता है ना वो रख देते हैं, सोते हैं, सोते टीवी देखते सोते सो जाते हैं, और फिर उसको उधर ही सामने रखा हुआ होता है कुछ ठूस के वापस टीवी देखते हैं, वापस सो जाते हैं, बोलते बस रिलैक्स, इतना आलस्य। तो यहाँ पर आलस्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये सुख कैसा होता है कि हमें कुछ काम ना करना पड़े। जैसे अगर स्टूडेंट को कोई टीचर बोले कि भाई ये कार्य करके आना, तो जो क्रियाशील होंगे वो कल करके आएंगे, कुछ उसमें से मिस्टेक होंगी, फिर टीचर उसको इम्प्रूव करके बताए। लेकिन जो तमोगुणी होंगे ना वो क्या करेंगे, काम नहीं करके आएंगे, फिर जब टीचर पूछ रही होगी कि ये काम किया तो फिर उस टाइम पर क्या करेंगे, किसी तरह से खुद को बचाएंगे, जैसे चले गए किसी कोई बहाना बना के या वॉशरूम का करके चले गए कि ये सीन खत्म हो जाए ना, कि टीचर सबसे पूछ लेगी मैं तो चला जाऊंगा, और वो चला गया, ठीक है, फिर वापस जब आया तब तक तो टीचर ने वो सारा कर लिया था कार्यक्रम और दूसरा काम करा रही थी, फिर उसमें उसको आनंद आता है कि देखो मैं कैसे बच गया, मैंने खुद को कैसे बचा लिया। तो हालांकि उसमें उसका लॉस है, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे उसको समझ में नहीं आएगा, पहला कार्य नहीं करेगा, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन उसी में वो आनंद मना रहा होता है, वास्तविक आनंद होता नहीं उसमें, लेकिन उसको ऐसी मोहग्रास, यहाँ पर क्या बताया, मोहनम आत्मना, अपने आप को ही मोह से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है कि इसने देखो मैंने कैसा तीर मारा, कि मैंने टीचर को बुद्धू बना दिया, हालांकि उसको पता नहीं अपना कितना लॉस किया उसने। बिल्कुल वैसे ही होते हैं शराबी भी, कहीं गटर में पड़े होंगे शराब पीकर, कहीं कचरे में पड़े हुए होंगे, उल्टा सीधा बोंक रहे होंगे, समाज में इतनी निंदा हो रही है उनकी, और परिवार में इतनी निंदा हो रही होती है, इवन उनके फैमिली वाले भी उनका आदर नहीं करते, लेकिन उस टाइम पर वो आनंद महसूस कर रहे होते हैं, हाँ हम तो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा सुख है हमें। तो ये है तमोगुणी सुख, जिसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। अब किसी को अगर काम ना करके, अब देखो क्या है, जो रजोगुणी लोग होते हैं ना वो फिर भी क्रियाशील होते हैं, वो काम करते हैं, अब वो अलग बात होती है, जैसे हमने कल पढ़ा 38 में, विषयेन्द्रिय संयोगात् यद्रेवतोपम के विषय इंद्रियों के संयोग से वो जो सुख प्राप्त होता है, जो शुरू में अमृत की तरह, लेकिन फिर भी विषय और इंद्रियों का संयोग हो रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश में वो कार्यशील होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करके कोई अच्छा सा घर बनता है, और फिर अब बन गया, ये अलग बात है, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने सुख की साधना सुविधाएं बनाने की कोशिश की ना, लेकिन अब उसके अंदर दुख मिलेगा वो तो इस संसार की एक हकीकत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि इस संसार में जो भी आप भौतिक चीजें देखते हो वो आपको सुख प्रदान नहीं करेंगी, उसमें सुख देने की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे कोई भी चीज आप देखो इस संसार में, आपको स्टार्ट में जो सुख देगी ना वो अंत में आपके लिए दुखी का, जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, ठीक है, उसको आप एक रसगुल्ला दो, बोलेगा हाँ रसगुल्ला तो मेरा फेवरेट है, खाओ, और फिर दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा दो, पांचवा दो, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, फिर बोलेगा बस अब मुझे नहीं खाना। अब अगर कोई दबा के उसके मुंह में डालेगा ना तो उसको उल्टी आ जाएगी, इतना मतलब इतना घिनौना हो जाता है। शुरू में रस आता है, संसार की सारी चीजें ऐसी हैं कि शुरू में आपको अच्छा लगने लगता है, लेकिन धीरे 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 वो सुख क्षीण होकर वही सुख जो है वो हमारे लिए दुख का कारण बनने लगता है, या इस संसार के भौतिक सुख की यह दृष्टि है। लेकिन फिर भी उसके लिए क्रियाशील रहना पड़ता है, करना पड़ता है कार्य। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सुख आलस्य से, उसमें तो क्या काम ही नहीं करता, तमोगुण में मनुष्य आलस्य में निद्रा में लगा रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी सुख है। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है ना। भगवान ने कहा तमस्व ज्ञान जम विद्धि, तो ये अज्ञान के कारण उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं ब्रह्म है। अब कुछ भी है उसको सब कुछ मोह नजर आ रहा है, कुछ कोई चीज में वो बोलते किसने देखा है कल, और भ्रम ही लग रहा है कि उसको ना भगवान में विश्वास होता है, ना नेक्स्ट बर्थ में विश्वास होता है, और ना किसी, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। अब अज्ञानता में वो सिर्फ मोहग्रस्त होता है हर चीज में, उससे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है और ना ही अंत में, उसे कहीं पर भी सुख मिलने वाला नहीं है। स्टार्ट में भी उसके लिए दुख है, एंड में भी उसके लिए दुख है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं रजोगुणी के विषय में, रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख है और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब देखो कुछ भी हो, रजोगुण में शुरू में थोड़ा सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका एंड क्या है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 18.38 भगवान ने कहा कि यत्तदग्रेमृतोपमं परिणामी विषमिव विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रेमृतोपमं परिणामी विषमिव तत् सुखम राजसम स्मृतम। शुरू में आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन अंत में परिणाम, वास्तव में पता है क्या, अंत बला तो सब बला। अगर शुरू में आपको कोई थोड़ी सी तकलीफ मिल रही है, लेकिन एंड में यदि आपको वह सुख मिल रहा है, तो शुरू वाली जो तकलीफ, इस संसार में कोई भी चीज जो ऐसी है जो आपको मेहनत से कमाओ, बहुत ज्यादा मेहनत करो और अंत में उसका रिजल्ट मिलता है अच्छा, तो वो मेहनत भी सार्थक हो जाती है ना, तो उसकी थकन खत्म हो जाती है। तो ये, लेकिन इसमें आप रजोगुण में क्या है, शुरू में आपको आनंद आ रहा है, एंड में आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है, और तमोगुण में क्या है कि सारा का सारा शुरू से लेकर अंत तक दुख। अब रिजल्ट में तो दुख ही मिला ना, तो फिर वो सुख कैसे हो सकता है जिसका रिजल्ट दुख हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने हमें तीन च्वाइसेस दी हैं कि तुम किस तरह से सुखी होना चाहते हो। पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया 37 में, भगवान ने कहा यतद्दग्री विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। शुरू में तो जहर जैसा कड़वा होता है, जैसे शुरू में अब जिसने कभी माला नहीं किया उसको बैठो बोलो बैठ के माला करो, वो बोलेगा मुझे कोई और काम करा दो, घर की सफाई करवा दो, ये पोछा लगा दो, ये सब होगा मुझसे, लेकिन ये माला उठा के मैं बैठ, मतलब गंदा काम करने के लिए तैयार है, अच्छा काम उससे हो रहा नहीं है। तो ये होता नहीं है, शुरू में थोड़ा दुखदायक लगता है, करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन करते 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 ऐसा लगता है कि संसार में इससे ज्यादा अच्छा और कोई कार्य होगा नहीं, फिर कोई और कोई कार्य बोलेगा ना और कोई कार्य करने के लिए, तो ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं बैठ के अपना अपनी माला करूं, भगवान के नाम का स्मरण करूं, क्योंकि आनंद आ गया ना, एक दफा टेस्ट लग गया ना जिह्वा पर जब भगवान के पवित्र नाम का, तो उसके बाद संसार का कोई टेस्ट अच्छा लगने नहीं लगता। तो शुरू में थोड़ा सा दुख मिलता है, उसमें कष्ट होता है, लेकिन बाद में सुख होता है। और आगे रजोगुणी सुख विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद अग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम। तो शुरू में क्या लगता है, बहुत मीठा लगता है, क्योंकि इंद्रियों को उसका विषय प्राप्त हो रहा है, तो इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, हम अपने आप को क्योंकि इंद्रियों से रिलेटेड समझते हैं, अपने आपको यह जिस्म समझते हैं, इससे समझते हैं जब इंद्रियां खुश हो गई हैं इसका मतलब है मैं खुश हो गया। वास्तव में शास्त्र कहता है आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा की प्रसिद्धि किस में है, सवय पुंसाम बरो धर्मो यदो भक्ति अदोक्षजे अहेतु किया प्रतिहिता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को संतुष्ट करने का केवल एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति करना, और इस कलयुग में भगवान की भक्ति केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र महामंत्र के जप के द्वारा ही संभव है। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसे वास्तविक सुख मिलता है, क्योंकि वास्तव में वो आत्मा है। लेकिन रजोगुणी सुख में क्या होता है, आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हो तो शुरू में आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंत में क्योंकि आपकी रियलिटी से मैच नहीं करता ये वाला सुख, इसलिए वही सुख आपके दुख का कारण बनता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया 39 में भगवान ने कहा यदक्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी है। अब भगवान ने तीन तरह के सुख बता दिए हैं कि इस संसार में इस तीन तरह से सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन भगवान ने चॉइस हमारे ऊपर छोड़ी है कि आप किस तरह से सुखी होना चाहते हो। अब वो रजोगुणी सुख कोई चाहता है, कोई तमोगुणी सुख चाहता है, लेकिन भगवान ने इसका रिजल्ट भी बता दिया। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सुख प्राप्त कर लो, आपकी मर्जी है, आपका जीवन तो हाँ मर्जी तो है, लेकिन उसका क्या परिणाम निकलेगा वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया। 14.15 में भगवान ने कहा रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढयोनिषु जायते। आप जो रजोगुणी कार्य करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है पूरे जीवन वो रजोगुणी, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं पूरा जीवन जो है वो रजोगुणी रहूं या तमोगुणी रहूं अंत में मेरे अंदर सत्वगुण आ जाए, ऐसा नहीं। आपने जिस तरह से जीवन बिताया है अंत में आप पर वही गुण हावी होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है तथा प्रलीनस्तमसी मूढयोनिषु जायते, और यदि कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म लेता है। यदि कुत्ता बनना है, कॉकरोच बनना है, गटर का कीड़ा बनना है तो आज का सुख जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे तमोगुणी सुख वो आप कर सकते हो, और अगर रजोगुणी सुख हासिल करेंगे जो इंद्रिय विषय से, तो फिर ऐसे ही लोगों के यहाँ पर भगवान ने कहा कर्मियों सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। और इस संसार में जन्म लेना इसका मतलब है दुखी होना। यदि दुखी होना है तो आप इस ये जो रजोगुणी और तमोगुणी सुख को अभी आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन यदि दुखों का निवारण करना है तो क्या करना भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सतोगुण में जो मरता है उसका क्या होता है भगवान श्री कृष्ण 14.14 में बताते हैं, यदा सत्वी प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देह वृत तदोत्तम विदाम लोकान आमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। अब सत्वगुण में रहेगा तो कहाँ रहेगा, महर्षियों के उच्च लोकों को प्राप्त होगा। रजोगुण में मरेगा तो सकाम कर्मियों में, और तमोगुण में मरेगा तो जानवरों में जाकर कार्य करेगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है 2.45 में भगवान ने कहा त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन। ये तीन गुण है वेदों का विषय जो है, वो तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। आपको क्या करना है निस्त्रैगुणीय भव अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। क्यों कहा भगवान ने ऐसा, क्योंकि यदि सत्वगुण में मरेंगे तो महर्षियों के लोक में जाएंगे, रजोगुण में मरेंगे तो सकाम कर्मियों में पैदा होंगे, तमोगुण में मरेंगे तो जानवर बनेंगे। और भगवान ने 8.16 में यहाँ तक कह दिया आब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नोर्जुन माम प्रत्यत कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। वास्तव में भक्तों हमारे इस संसार में जो भी कार्य करते हैं उसका एक ही मकसद होता है सुख प्राप्त करना, और भगवान श्री कृष्ण आज इस सुख के टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ये कहते हैं भगवान ने कहा है, देखो गौर से सुनना है, चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 16 भगवान ने कहा अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तर सारे लोक दुखों के घर हैं, यानी कि जहां भी जाओगे केवल दुख मिलेगा। ये जो समझ रहे हो जो सत्वगुण में है रजोगुण में है और तमोगुण में है, जिसको आप सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं है, क्योंकि भगवान का स्टेटमेंट है अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 16 पेज नंबर 2873। तो उसमें आप देखो भगवान ने कहा इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है। क्यों, जहाँ पर जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। सर्वोच्च लोक कौन सा है, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से लेकर जो नीचे अधो पतन अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल और नरक, सब ऊपर से लेकर नीचे तक दुखी दुख भरे हुए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु माम पैत्य तु कौन्ते हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है, जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, पुनर्जन्म ना विद्यति, उसे कभी भी दोबारा दुखों वाले जगह पे आना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरा शाश्वत सुखमय धाम है। तो यदि कोई कार्य है जिससे हम सही वाकई में सुख प्राप्त कर सकते हैं, और तो वो है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाएं। और उस धाम में जाने का केवल एक तरीका भगवान श्री कृष्ण ने बताया है चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 65 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो सी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान श्री कृष्ण कहते इतना इजी है, आपको खाली क्या करना है, मन मना मन से मेरा चिंतन करना है, मेरा भक्त बनना है और मेरी पूजा करनी है। उस कलयुग में कितना इजी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया कि खाली आप भगवान के विषय में श्रवण करो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो, यही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप ऐसा करोगे तो मामे वैश्यसि सत्यम दे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रतिजाने प्रियोसि में, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करते उसे कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, सत्यम ते, मैं तुम्हें बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो मेरे पास आओगे और वास्तविक सुख को प्राप्त करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।